이 말씀을 묻지 말 뿐이지. 옛날도 좀 웃었다.
क्या क्यों बताया किसी ने ये सब खेल रचाया अपने आप सभी कुछ करके अपने अपने आप छुपाया भक्ति मार्ग का क्यों है अगर ज्ञान मार्ग का जीत हो तो ज्ञानियों को तो पता होगा ना किस बात का कि ये खेल किसने रचाया जो अज्ञानी होंगे वो क्या कहेंगे जिसने रचाया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है तो पूछेंगे कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं सब कुछ क्या करते हैं इस खेल में तो जाने क्या क्या होता रहता है अच्छे से अच्छा भी होता है इसे ड्रामा रूपी रंगमंच पर क्या न क्या होता है अच्छे से अच्छा भी होता है तो बुरे से बुरा भी होता है तो सभी कुछ करते हैं क्या ये बाप ही है जो सभी कुछ करते हैं अच्छा करते हैं वो तो ठीक जो ड्रामा में जो बुरा बुरा चलता है वो भी करते हैं क्या कहीं चोरी होती है कहीं डकैती होती है कहीं क्या होता है कहीं खून खराबा होता है तो सब कुछ वो ही करते हैं क्या है? सब कुछ करते हैं नहीं ये तो यहाँ बताया ना बच्चे अच्छी रीत समझते हैं समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं सब कुछ है ड्रामा में तो अच्छा बुरा सब कुछ है तो क्या सब कुछ करते हैं बच्चे जानते हैं कि वो सभी कुछ करते हैं बेसिक नॉलेज में तो ये पढ़ाई पढ़ाएगी कुछ काम प्रकृति करती है कुछ काम मनुष्य करते हैं और परमात्मा का काम परमात्मा करते हैं कि सब कुछ काम परमात्मा करते हैं बोला करण करावनहार है क्या करण करावनहार है करते हैं खुद किसके द्वारा ब्रह्मा द्वारा करते हैं और कराते हैं बच्चों के द्वारा ऐसा क्यों ब्रह्मा द्वारा खुद करते हैं और बच्चों द्वारा कराते हैं ऐसे क्यों कहा अच्छा पहले करके दिखाते हैं ऐसे करो अच्छा ठीक फिर बाद में ऐसे करो तो ये तो कराने की बात हुई ना करके पहले दिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा तो ब्रह्मा द्वारा जब करणहार है तो करावनहार बच्चों के द्वारा क्यों जब खुद ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है तो बच्चों से क्यों कराता है बच्चे सहयोगी बनते स्वर्ग स्थापन करने में स्थापन कोई करता है सहयोगी बच्चे नहीं बनते हैं बहुत मुझान है बाप क्या करवाते हैं स्थापन करवाते हैं फिर ब्रह्मा द्वारा क्या करवाते हैं ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाए स्वर्ग स्थापन हुआ वो अधूरा रह गया तो अश्रेष्ठ कर्म जो होता है वो कभी अधूरा होता है बच्चों द्वारा करवाया इसलिए मतलब ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ कर्म नहीं करवाया संपूर्ण नहीं हुआ तो श्रेष्ठ कर्म कभी अपूर्ण भी रहता है क्या तो ब्रह्मा खलास हो गया ना अच्छा तो ये कहो ना कि ब्रह्मा भी दो हैं एक सूक्ष्म वतनवासी और एक व्यक्त वतनवासी तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं करते हैं कौन से ब्रह्मा द्वारा करते हैं स्वर्ग स्थापन और कराते क्या हैं और किसके द्वारा कराते हैं तो बोला शंकर द्वारा विनाश और ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूं क्या करता हूं कर्म करके दिखाता हूं सिर्फ कि ऐसे ऐसे कर्म करो ताकि बच्चे फॉलो कर सकें करना फिर भी बच्चों को है क्योंकि जो जितना करेंगे वो उतना पाएंगे अगर सब कुछ बात ही कर दे तो फिर नंबर वार तो प्राप्ति करने की बात ही नहीं रहेगी नंबर वार प्राप्ति करने की बात कब रहेगी
बच्चे तो करते हैं
हाँ जब बच्चे खुद कर रहे हैं क्योंकि जो जितना करेंगे सहयोगी बनेंगे उतना पद प्राप्त करेंगे अच्छा ये तो हुई करणहार की कि बाप करणहार बन के कर्म करके दिखाता है ब्रह्मा द्वारा और बच्चे उसको फॉलो करें कर्मों में फिर करावनहार ये दूसरे के द्वारा क्यों कहा खुद क्यों नहीं करावनहार किस बात का क्या करावनहार स्थापना कराता है विनाश करते हैं विनाश कराते हैं ये विनाश कराते हैं क्यों शंकर द्वारा विनाश कराते हैं क्यों खुद क्यों नहीं कराते करते
विश्व कल्याणकारी
बाप विश्व कल्याणकारी और शंकर शंकर विश्व का विनाशकारी अच्छा अच्छा सब आप कड़ुआ कड़ुआ धू धू दो सारा शंकर के माथे पे मर दे क्या कराते हैं विनाश कराते हैं तो विनाश कराना कोई अच्छी चीज है क्या विनाश कल्याणकारी है अच्छा विनाश कल्याणकारी तो विनाश पवित्रता से होता है क्या पवित्रता से इम्प्योरिटी से होता है विनाश तो खुद क्यों नहीं करते जब कल्याणकारी है तो भले वो तो होगा वो तो मालूम है होगा लेकिन वो कल्याणकारी काम खुद क्यों नहीं करे ना शंकर को बेचारे को पाए के बीच में लगा दिया उसको बीच में क्यों लगा दिया करवाता है ना तो वो श्रेष्ठ कर्म है ना विनाश का कर्म कल्याणकारी कर्म है तो कल्याणकारी तो कर्म है तो श्रेष्ठ कर्म हुआ तो जब श्रेष्ठ कर्म हुआ तो वो श्रेष्ठ कर्म खुद करे ना शंकर से क्यों कराता है करवाते हैं जिससे पाप ना लगे अच्छा शिव बाबा को क्या पाप लग जाएगा कर्मातीत शंकर द्वारा यानी शंकर कर्मातीत नहीं है तो जो कर्मातीत नहीं है उसके द्वारा कराएंगे तो उसको पाप नहीं लगेगा
कर्मातीत है तो पाप कैसे लगेगा
अच्छा शंकर कर्मातीत है अच्छा शिव बाबा वो कर्म नहीं करता हाँ कर्म जो है वो करता तो है क्योंकि बच्चों को करके दिखाना है लेकिन कर्म का फल शिव बाबा के लिए नहीं बनता और बच्चों का बनता है तो उनमें भी कोई गॉड इज वन गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है देवताओं में बड़ा शंकर कौन सा देवता बड़ा है ऋषि ब्रह्मा देवताओं में बड़ा शंकर तो बड़ा बच्चा कौन हुआ शंकर बड़ा बच्चा हुआ तो जब जिस व्यक्ति से वो बड़ा बच्चा हुआ तो पहले वारसदार कौन बनेगा बड़ा बच्चा ही वारसदार बनेगा तो पहले कर्मातीत कौन होगा बोल बच्चा कर्मातीत हो जो कर्मातीत पहले बनता है फिर उसी से वो कठोर काम कराया जाता है कौन सा काम विनाश का काम ये विनाश का काम इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक नहीं कर सके उन्होंने सिर्फ अपनी धर्म की स्थापना की लेकिन पुरानी धारणाओं का विनाश नहीं किया तो जब तक पुरानी मान्यताओं का सड़ी गली मान्यताओं का विनाश नहीं होगा पुरानी धारणाओं का विनाश नहीं होगा पुराने धर्म का विनाश नहीं होगा तो नई चीज उसमें और ऐड कर दो पुराने में ही سڑی گلی چیز میں نئی چیز اور ایڈ کر دو، جیسے سڑے پھل رکھے ہوں اور اس میں دو چار ٹوکری اور تازے پھل ملا دو تو کیا ہوگا؟ وہ بھی سڑ جائیں گے نا، ایسے تو نہیں کہ وہ بچے رہیں گے. تو ایسے ہی اور جتنے بھی دھرم آئے انہوں نے اپنا دھرم تو استھاپن کیا، پرانے پن کا وناش نہیں کیا، اس لیے کیا ہوا کہ وہ بھی جلدی جلدی نیچے گرتے چلیں گے اور ساری دنیا نیچے گرتی چلیں گی. تو شیو بابا کیا کرتے ہیں؟ شیو بابا آتے ہیں تو صرف دھرم کی استھاپنا ہی نہیں کرتے لیکن پرانے دھرموں کا وناش بھی کراتے ہیں. لیکن یہ پرانے دھرموں کا وناش جو ہے وہ سوئم نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کراتے ہیں. تو نمت بنا ہوا ہے شنکر، تو شنکر دوارا وناش یہ کراونہار کا پارٹ ہو گیا. لیکن مرلی میں یہ ڈائریکشن دیا ہوا ہے تم بچوں کو ماسٹر شنکر بننے کا پرشارتھ نہیں کرنا ہے، شنکر کا کام شنکر کو کرنے دو. تم کو کیا پرشارتھ کرنا ہے؟ ماسٹر برہما بننے کا پرشارتھ کرنا ہے. برہما نے جیسے کرم کیے ویسے کرم تم کو کر کے دکھانے ہیں. کرموں میں برہما کو فالو کرنا ہے اور ڈائریکشن ڈائریکشن میرا مانو. اس میں کیا انتر ہوا؟ برہما کے مکھ سے ڈائریکشن نہیں ملتے ہیں کیا؟ برہما کے مکھ سے ڈائریکشن نہیں ملتے کیا ماں جی؟ تو اس کے ڈائریکشن نہیں ماننے، اس کے مکھ سے جو مرلیاں نکلی ہیں ان کو ماننا ہی نہیں، سجاؤ چلائیں جو ماننی نہیں ہے. بولتے بہت تو حساب سے نہیں بولتے. شیو بابا نے مرلیاں چلائی نا، تو وہ ڈائریکشن ماننے ہیں کہ نہیں ماننا ہے. تو پھر یہ کیوں کہا کہ بات میری مانو اور کرم جیسے برہما نے کرے ویسے کرم کرو، برہما کو فالو کرو اور ڈائریکشن میرے مانو. ہاں برہما کا پارٹ تھا کومن پارٹ، لوز پارٹ تھا. اور پھر وہ ماں جس کا پریکٹیکل میں باپ نہ ہو تو وہ ماں تو بچوں کے آدھین ہو جاتی. تو ایسے ہوا برہما ماں تو بچوں کے آدھین تھی، بھل شیو بابا ان میں آ کے وانی چلاتے تھے لیکن اس وانی کو تو برہما باپ بھی پورا پورا نہیں سمجھ سکے. اگر سمجھا ہوتا تو دس ورش کے وناش کی گھوشنا سنچھتر کی نہیں کراتے دنیا میں. تو اس کو جو وانی بولی شیو نے برہما کے مکھ سے اس کو بھی کلیریفیکیشن دینے کے لیے شیو کو ہی سر آنا پڑتا ہے، ٹیچر کا کام اسی کو کرنا پڑتا ہے اور سدگرو کا کام بھی اسی سپریم سول کو کرنا پڑتا ہے. جب برہما اپنا شریر چھوڑ دیتے تو برہما کے دوارا کرم کر کے دکھائے، ان کرموں کو بچوں کو فالو کرنا ہے لیکن بات کس کی ماننا؟ میری مانو. تو اس کا مطلب برہما کے مکھ سے کہی ہوئی باتیں تو مانیں بچے لیکن ان باتوں کا ارتھ ہی نہیں سمجھتے تو مانیں گے کہاں سے؟ بہت سے ایسے ڈائریکشنز ہیں برہما کے مکھ سے بولے ہوئے لیکن بچوں کو ان کا ارتھ پتا ہی نہیں، تب کیسے مانیں گے؟ تو ضرور باپ کو پھر ٹیچر بن کر کے بھی آنا پڑتا ہے. تو ڈائریکشن پھر روبرو جو باپ آ کر کے سنمخ بولتے ہیں ان ڈائریکشن کو ماننا پڑے. تو بتایا کہ یہ باپ ہی ہے جو سب کچھ کرتے ہیں. تو سب کچھ کرتے ہیں مانا استھاپنا اور وناش خود کرتے ہیں کیا؟ سب کچھ میں تو سب کچھ آ گیا. برہما دوارا استھاپنا کرتے ہیں کائی کی؟ برہمن دھرم کی. برہما دوارا برہمن بنے یا کوئی دیوتا بنا؟ برہمن بنے. پھر سیکنڈ مشینری جب چلتی ہے برہمن کو کیا بنایا جاتا؟ دیوتا. تو سیکنڈ مشینری میں ضرور سیکنڈ رتھ ہوگا، وہی رتھ کام نہیں کرے گا. برہما دوارا برہمن تو ضرور جس کے دوارا دیوتا دھرم کی استھاپنا ہو وہ پڑھانے والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر کے دوارا ڈاکٹر بنائے جاتے، ٹیچر کے دوارا ٹیچر بنائے جاتے، وکیل کے دوارا وکیل بنائے جاتے. وکیلوں کو پڑھائی پڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ وکیل ہوگا نا. تو بھگوان آ کر کے بھگوان بھگوتی بنائے گا یا دیوتا بنائے گا؟ بھگوان آئے گا تو بھگوان بھگوتی بنائے گا، دیوتا देवता नहीं, फिर देवता किसके द्वारा? जो देव पद लायक हो उसके द्वारा देवता। तो फिर बीच में रख दिया है त्रिमूर्ति को, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और ब्रह्मा को कहेंगे नहीं देवता, उनको दाढ़ी मूछी दिखाई जाती, वो तो तीन लोकों में नीचे तबके में दिखाए गए। उनके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा तो सिर्फ ब्राह्मण पैदा होते, ब्राह्मण विकारी भी होते हैं, फिर नंबर वार निर्विकारी भी होते हैं। बाकी रह गए विष्णु, तो विष्णु तो न कलयुग में है, विष्णु को संगम का भी नहीं कहेंगे। विष्णु कब होता है? सतयुग में होता है, तो सतयुग में वहां पढ़ाई पढ़ाने की दरकार नहीं। फिर रह गया कौन? अब रह गया शंकर। तो शंकर के दोनों प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला विकारी चित्र भी दिखाया जाता, और क्लीन शेप वाला भी देवताई चित्र भी दिखाया जाता। उसी रूप का भारत में गायन है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर एक आदमी का नाम है, दो आदमी का नाम है? श्याम सुंदर ये नाम एक है या दो? दो नाम है, शब्द अलग अलग है, उनके अर्थ अलग अलग है, लेकिन नाम तो एक ही है। तो एक नाम है तो व्यक्ति एक होगा या दो? व्यक्ति भी जरूर एक होगा, और एक युग में होगा या दो युगों में? एक युग में जब व्यक्ति है तो जरूर एक युग में होना चाहिए। तो बाबा ने बोला ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर पार्ट बजाने वाला कोई और धर्म में नहीं होता, जैसा इस धर्म में होता है। तो वो एक ही शरीर से श्याम बनता, विकारी बनता, काला बनता, ये काले चित्र पूजे जाते हैं, राम के भी काले चित्र, तो कृष्ण के भी काले चित्र, उन्होंने शिव को भी काला बना दिया। अब शिव तो कभी काला होता नहीं, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता और प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना करता, वो जरूर काला, और काले के बाद फिर गोरा बनता है। तो बताया कि सब कुछ करते हैं, तो सब कुछ करते हैं का मतलब किसके लिए बोला सब कुछ करते हैं, और किसके लिए बोला करण करावन हार है? ये तो बिंदु पाठ बजाती, बिंदु आत्मा ही तो पाठ बजाती है, तो कौन सी बिंदु आत्मा के लिए बोला करण करावन हार है, और कौन सी बिंदु आत्मा के लिए बोला सब कुछ करते हैं, यानी अच्छा भी करते तो बुरा भी कर, सब कुछ में तो सब आ गया ना, जो दुनियावी दृष्टि से बुरा दिखाई पड़ता है वो भी करते हैं। हालांकि परमात्मा जो जिस रथ के द्वारा कार्य कराएगा निमित्त बना करके, उसके द्वारा कुछ खराब तो होने वाला है नहीं, लेकिन जिन अज्ञानी लोग हैं उनकी दृष्टि में वो खराब हो सकता है। तो सब कुछ करते हैं माना जो भी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जो भी पार्ट नुदा हुआ है वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? अल्पकालिक दृष्टि से देखेंगे तो अकल्याणकारी दिखाई पड़ेगा, और विशाल बुद्धि से देखेंगे तो सृष्टि रूपी रंगमंच का हर काम कल्याणकारी है। तो बोला बाकी सब कुछ करते हैं करण करावनहार है, करते भी हैं और कराते भी। महिमा बहुत गाते हैं सिख लोग, क्योंकि नया धर्म है, और ये है बहुत पुराना धर्म। कौन सा? देवी देवता धर्म वाले बहुत तमो प्रधान बन गए, तो वो उस करतार की महिमा ही भूल गए। सिख लोग, सिख नया धर्म है तो ना ज्यादा सतो प्रधान बनते ना ज्यादा तमो प्रधान बनते। गाते हैं एक ओंकार सतगुरु अकाल मूर्त, ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। क्या अर्थ है ओम का? अहम आत्मा और ये मम शरीर, तो ओम का ये अर्थ हुआ आ ऊ म, आ ओम तीन अक्षर हुए, आ ब्रह्मा दिव्य गुणों की स्थापना का काम, दैवी गुणों स्थापन करना, आत्मा में श्रेष्ठ गुणों को भरना। ऊ विष्णु, विष्णु का ऊ, तो ऊ से बना विष्णु, माना जो दैवी गुण स्थापन किए हैं उनको अंदर बरकरार बनाए रखना, ऐसा ना हो कि जो हमने स्थापना की है वो खलास हो जाए। और महेश मा मामन महेश मन शंकर महाईश महाईश उसको क्यों कहा, छोटा बड़ा ईश क्यों नहीं, ईश माना शासन करता। हाँ महाईश माना बहुत बड़ा शासन करता, तो शासन कौन कितने ऊपर करेगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो ही तो सबके ऊपर शासन कर सकेगा। तो सबसे जास्ती पावरफुल जो होगा वो सब धर्मों को डाउन कर लेगा, जितने भी अधर्म फैले हुए हैं कलयुग के अंत में संसार में, धर्म के नाम पर अधर्म तमो प्रधान बन जाते हैं, उन सब को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए हुआ महेश महान ईश, बड़े से बड़ा शासन करता, सब धर्मों के ऊपर शासन करता बनकर के बैठ जाता, उसको कहते हैं विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तो ओम का अर्थ बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझा दिया, मैं आत्मा हूं। तो आत्माएं तो ढेर हैं, कितनी आत्माएं है, मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा ही 550 करोड़ बताई दी। तो हर आत्मा के अंदर ये सिफ्त भरी हुई है कि वो अपनी अपनी दुनिया का निर्माण खुद करती है। अब जो ज्यादा पावरफुल आत्मा होगी वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों प्रकार का पार्ट, हाँ महान रीत से बजाए। तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ ओम का कर देते हैं। मैं कहता हूं मैं परमात्मा परम धर्म का रहने वाला हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। पुनर्जन्म में कौन आते, तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। कहता कौन है, मैं कहता हूं, कौन कहता है, मैं शिव बाबा किसके मुख से, ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मा मुख से पुनर्जन्म कहने वाला जो है वो पुनर्जन्म लेता है, नहीं लेता है, ब्रह्मा लेता। अच्छा फिर कहा किसने, मतलब जिसका पुनर्जन्म होगा उसका मरना भी तो होगा है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी। तो मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, तो जरूर कोई ऐसा है जिसके लिए शूटिंग पीरियड में ये बात लागू हो कि न वो संशय रूपी मृत्यु में आता और न निश्चय रूपी जन्म लेता, उसका तो निश्चय हुआ ही पड़ा है अटल। जन्म के चक्र में आने वाली वो आत्मा नहीं है, जब से प्रत्यक्ष हो, कब से प्रत्यक्ष हो यज्ञ के आदि में तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों प्रत्यक्ष हुए, यज्ञ के आदि में कौन प्रत्यक्ष हुआ, बच्चों के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होती है, मां प्रत्यक्ष होती, तो ब्रह्मा मां प्रत्यक्ष हुई। बाप प्रत्यक्ष नहीं हुए, बाप तो गुप्त रहता है, तो वही बाप जब टीचर बन करके आता है, बाप का भी कार्य करता है, ऐसा नहीं बाप का काम नहीं करता है, आज का काम है बाप का बीजारोपण का, वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन बाद में अंत में बच्चों को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वर्षा तो देता है ना, तो वर्षा देने के लिए भी बाप को प्रत्यक्ष होना पड़े, पढ़ाई पढ़ाने के लिए टीचर बनकर के भी प्रत्यक्ष होना पड़े, प्रोज और पोएट्री का क्लैरिफिकेशन देने के लिए, और फिर बच्चों की सदगति करने के लिए भी बाप को सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होना पड़े। सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं तो उसकी मूर्ति तो जरूर जरूर होनी चाहिए, सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल बिंदु होगा या दलाल साकार में होगा, दलाल तो जरूर साकार में होगा। तो मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, तो वो कौन सा रूप है जो ये कहता है मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, ब्रह्मा का रूप तो जो है वो तो पुनर्जन्म में आ गया, शरीर छोड़ दिया तो उनको जन्म भी लेना पड़ेगा। तो शूटिंग पीरियड में सिर्फ एक ही स्वरूप है जो निश्चय अनिश्चय के जनमन के चक्र में आता नहीं, बाकी सबको कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय होता जरूर है। तो वो एक शंकर का रूप है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि शंकर की मृत्यु नहीं दिखाई, अमर दिखाया है, अमरनाथ तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं, क्या परिचय दिया कि मुझे बाप परम पिता परमात्मा जो पाठधारी है प्रैक्टिकल में सृष्टि रूपी रंगमंच पर संगम युग में, उसकी पहचान क्या बताई कि बच्चों को निश्चय अनिश्चय का चक्र चलेगा, माया उनको चक्कर में डालेगी, अभी अभी संशय में लाएगी, अभी अभी निश्चय में लाएगी, लेकिन बाप का जो पार्ट होगा उसको कभी संशय या निश्चय नहीं हो सकता। जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तो कितने होंगे सितारे चैतन्य दुनिया में, 9 लाख सितारे, 9 लाख सितारे आसमान में गए हुए हैं, तो 9 लाख सितारों में कोई ऐसा सितारा भी है जो अपना स्थान छोड़ता ही नहीं, अटल रहता है, ध्रुव तारा है, तो वो सितारे तो आकाश के सितारे हैं, जड़ सितारे, और धरती के सितारे कौन बताए, धरती के सितारे तुम बच्चे, तो तुम बच्चे जो धरती के सितारे हो, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले, पूरे 84 का चक्कर लगाने वाले, उन बच्चों में भी एक बच्चे के अलावा और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में न आता हो, जन्म मरण के चक्र में न आता हो, ज्ञान में कोई चल पड़ा, निश्चय हो गया तो कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ, और निश्चय उसका उखड़ गया तो क्या कहते हैं, मर गए, तो मृत्यु हो गई, तो तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बैठ बच्चों को बैठ करके ये परिचय देते हैं, किसका, बाप के पार्ट का, ये भी एक पहचान हुई बाप के पार्ट की, बच्चों के सामने ही मैं प्रत्यक्ष होता हूं, इन्हों को समझाया है मैं हूं परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्मा भक्ति मार्ग में याद करती हो, ओ गॉड फादर, उनकी महिमा है, पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। पहली महिमा क्या बताई, पतित पावन, उसको आने का, इस सृष्टि पर आने का पहला मकसद क्या होता है, पतितों को पावन बनाना, उसका एम ऑब्जेक्ट आने का ये नहीं हो ज्ञान सुनाना, भले आता है तो पहले ज्ञान ही सुनाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना करके वापस चला जाएगा, काम पूरा हो गया, नहीं, उसका तो एम ऑब्जेक्ट ही है इस सृष्टि पर, पतित सृष्टि पर आकर के पतितों को आकर के पावन बनाना, पावन दुनिया स्थापन करना, रहम दिल, किसके ऊपर रहम दिल बनता है, जो रहम करने योग्य होंगे उन्हीं के ऊपर रहम किया जाएगा, और अहंकारी होंगे तो रहम करने योग्य हुए नहीं, उनके ऊपर क्या रहम करेगा, यादवों के ऊपर रहम करेगा, यादवों के ऊपर क्या रहम करेगा, वो तो समझते हैं कि हम ही भगवान, हमारे सामने देखने से दुनिया में कौन भगवान होता है, हम चाहें तो एक सेकंड में सृष्टि को खलास कर दें, सारी दुनिया भस्म कर दें, तो जिनके अंदर ये अहंकार है उनके ऊपर रहम दिल नहीं बनता, बाकी जो उसके बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर वो रहम दिल, कौन बच्चे हैं, आत्मा है मेरे बच्चे, आत्मा मन आत्मिक दृष्टि में जो रहने वाले बच्चे हैं वही मेरे बच्चे हैं, इसलिए आते आते बाबा बोलते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, देह अभिमानी सांडों को बैठ नहीं समझाना, वो समझेंगे, तो लिबरेटर कैसे लिबरेट करता, कैसे छुटकारा दिलाता, दुख दर्दों की दुनिया से छुटकारा दिलाता, दुख दर्द देने वाले चोर डकैत तो कौन है, पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटकारा दिलाता, उनको गाइड भी कहते हैं, रास्ता बताने वाला, कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा, यह है पांडव सेना, पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ, नैया मन शरीर रूपी नैया, तो शरीर रूपी नैया क्या पार जाएगी, इस विषय वैतरणी नदी से या विषय सागर से ये शरीर पार जाएगा क्या कि आत्मा पार जाएगी? फिर नैया क्यों कहा? आत्मा को तो नैया नहीं कहता, कहते हैं आत्मा तो बिठैया है, नैया तो ये शरीर है।
शरीर तो
अभिमान। हाँ, जब बाबा ने बोला है तो कोई झूठ थोड़े ही बोला है, या बाबा शब्दों के अर्थ नहीं जानता। 88 का प्रातः क्लास पहले पेज का मध्य आदि। तो कहा नैया मेरी पार लगाओ, यानी शरीर रूपी नैया को भी वो पार लगाने वाला है तो आत्मा को भी पार लगाने वाला। पहले कौन पार लगेगा? पहले आत्मा तमो प्रधान से सतु प्रधान बने, बीज सतु प्रधान बने तो उसका शरीर रूपी वृक्ष भी सतु प्रधान बनेगा। मैं बहुत पापी हूँ, मेरी नैया पार लगाओ। एक सिंधी में कहावत भी है, बेड़ी मेरी पार लगाए। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। इसका खिवैया शरीर रूपी नैया का खिवैया, जिसमें आत्मा रूपी बिठैया बैठा हुआ है वो शरीर रूपी नैया का खिवैया भी है, खेने वाला, पार लगाने वाला। तो मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा को डोज देने वाला, उसको पार लगाने वाला मन बुद्धि रूपी आत्मा होगा या शरीर होगा? मन बुद्धि रूपी आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला जरूर आत्मा ही होना चाहिए। वो कभी देह अभिमान में आने वाला होता नहीं। फिर शरीर भी है, शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ होता है। वो 5 तत्वों का जो शरीर होता है वो तो तमो प्रधान ही बनता है, तो सतो प्रधान ही बनता है। एवर प्योर तो हमेशा हो नहीं सकता कि शरीर हमेशा एवर प्योर ही बने रहे। सत्य को त्रेता में तो प्योर रहेंगे नंबर वन, लेकिन द्वापर कलयुग में तो शरीर इम्प्योर होंगे। तो शरीरधारी जो है वो नंबर वन है। तो शरीर वाली जो नई आए हैं उन नैयों को पार ले जाने वाला जो खिवैया बताया, शरीर रूपी नाव को पार ले जाने वाला, कहाँ ले जाने वाला पार? सिर्फ परमधाम में। परमधाम में तो ये नैया जाने वाली नहीं है, तो ये नैया कहाँ जाएगी? सुखधाम में जाएगी। तो सुखधाम में इस शरीर रूपी नैया को पार ले जाने वाला जो खिवैया जिसको कहा, वो खिवैया वास्तव में साकार होगा या सिर्फ बिंदु होगा? क्योंकि शिव ज्योति बिंदु तो परमधाम में वापस जाते हैं, वहां तक साथी बनेंगे आत्माओं के, बाकी सुखधाम में वो नहीं जाते। वो तो सुखधाम में सिर्फ बच्चों को भेजने वाले हैं। तो बच्चों को जो बोला कि पार लगाने वाला है, नैया को पार ले जाने वाला है इस दुखधाम से सुखधाम में, तो जरूर पार ले जाने वाला खुद भी तो सुखधाम में पहुंचने वाला होगा ना। तो बताया नैया मेरी पार लगाओ, खिवैया कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, कहते हैं तुम कितने मस्त थे। सतयुग त्रेता ने बेपरवाह बादशाह थे, कितने तुमको वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव दिखाते हैं, श्रीनाथ द्वारा कहाँ की यादगार, और जगन्नाथ द्वारा कहाँ की यादगार? जगन्नाथ द्वारे में तो वैभव नहीं दिखाते, वहां तो सूखी रोटी दाल चावल। और श्रीनाथ दरबार में तो घी का कुआ बना हुआ है, मशीन लगी हुई है घी निकालने के लिए, पीपे के पीपे ओढ़े ले जाते हैं, 36 प्रकार के भोग बनते हैं भोग वो घी वाले, तो कितना अंतर हो गया। तो श्रीनाथ कहां की यादगार, किसकी यादगार, और जगन्नाथ किसकी यादगार? श्रीमन श्रेष्ठ, नाथमन कंट्रोलर, नाथने वाला, नाक में नकेल डाल दे ना तो कहते हैं नथनिया डाल दी, नाथ लिया, कंट्रोल कर लिया। जैसे बैल की नाक में नकेल पड़ जाती है तो कैसा भी उद्दंड बैल हो तो वो भी कंट्रोल में काबू में आ जाता है। तो श्रीनाथ किसको को नाथ है, नाथ लिया उसने, श्रेष्ठ नाम, यानी जो देवताएं हैं श्रेष्ठ माने देवता, तो जो देव आत्माएं हैं श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको कंट्रोल में करने वाला, तो वो कौन है? प्रश्न, प्रश्न क्या हुआ? श्रीनाथ देवताओं का कंट्रोलर, अब उसको ब्रह्मा तो विष्णु कहो या कृष्ण कहो, बात एक ही। अच्छा फिर जगन्नाथ कौन? सारे जगत को नाचने वाला, उसमें देवताएं भी आ गए तो असुर भी आ गए। देवताओं का भी वो पूज्य है और असुरों का भी पूज्य है। देवताओं को भी वरदान देता है तो असुरों को भी वरदान देता है, और विष्णु वो सिर्फ देवताओं को वरदान देते, वो असुरों के ऊपर कभी रक्षा का हाथ रखते नहीं है। ये क्या बात हुई? असुरों के ऊपर रक्षा का हाथ रखना चाहिए क्या? ये अच्छी बात है क्या है? नहीं? अरे कलयुग के अंत में तो सभी असुर बन जाते हैं। जब सारे ही असुर हैं तो एक के ऊपर हाथ रखना और एक के ऊपर हाथ न रखना, ये क्या बात हुई? प्राप्ति करने की तो अधिकारी सभी है ना, बाप के बच्चे जब सभी पतित हैं तो सभी पतितों को पावन बनने का हक है। तो विष्णु या कृष्ण वो उतनी ऊंची स्टेज, ऊंची स्टेज नहीं कहेंगे, कितनी ऊंची स्टेज? विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी माना सबका कल्याण करने वाला, सिर्फ देवताओं का कल्याण करने वाला नहीं, सारे विश्व के धर्मों का, सब विश्व की आत्माओं का कल्याणकारी। तो श्रीनाथ द्वारे में देखो कितने वैभव दिखाते, ये क्या बात है? जो विश्व कल्याणकारी है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, उसको सूखी रोटियां खाने को मिलती है। पूरम में यादगार मंदिर बनाया हुआ, और जिसने देवताओं का रक्षण किया पालना की वो 36 प्रकार के वैभव खाए, ऐसा क्यों किया है? वहां पक्की रसोई क्यों बनती है और वहां कच्ची रसोई क्यों बनती है? वहां बहुत होते वहां थोड़े होते, तो अच्छा जहां बहुत होते हैं तो ज्यादा वैभव नहीं खिलाई जा सकते है? और जहां थोड़े होते हैं वहां ज्यादा वैभव खिलाए जा सकते हैं, माने स्वर्ग में तो आबादी थोड़ी होगी और रकबा बहुत होगा, पैदाइश बहुत होगी, तो इसलिए वहां किस प्रकार के भोग लगाते हैं। लेकिन होता तो आज की दुनिया में है ना, ये यादगार, ये यादगार है कहाँ की जो 36 प्रकार के वहां भोग लगते हैं और जगन्नाथ भंडारे में सूखी रोटी दाल चावल का भोग लगता है? क्या क्यों कैसे वहां पक्की रसोई क्यों, वहां कच्ची रसोई क्यों? हाँ वो आत्माएं वहां ऐसी दिखाई गई जो पक गई, श्रेष्ठ आत्माएं, और वहां वहां सब कच्ची है। अच्छा है? दोनों प्रकार की, तो इसलिए उनको मिक्स भोजन खिला दिया जाता है, मिक्स भी हो तो भी अच्छा, मिक्स में तो 36 प्रकार का भी होगा तो कच्चा पक्का भी होगा, फिर वहां सिर्फ कच्चा ही कच्चा क्यों खिलाते हैं? जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनते हैं जो बनाने में भी देर न लगे, 36 प्रकार के भोग बनाने में तो बहुत देर लगेगी, टाइम ही सारा उसमें चला जाएगा। हाँ खाना बनाने पकाने में पुरुषार्थ क्या करेंगे? तो विश्व कल्याण करना वो है ऊंची स्टेज, और थोड़ी आत्माओं का कल्याण करना वो उतनी ऊंची स्टेज नहीं है। थोड़ी आत्माओं का कल्याण करना ये संकुचित विचारधारा हो गई। ये संकुचित विचारधारा का मतलब ये हुआ कि हम अपने देश का ही कल्याण करेंगे, दूसरे देश वालों का कल्याण नहीं करेंगे। अरे भारत की तो मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, तो सिर्फ देव आत्माओं का कल्याण करना और दूसरी आत्माओं का कल्याण न करना, ये तो जैसे पक्षपात हो गया। तो जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनते हैं, दाल चावल इसलिए बनते हैं कि दाल चावल बनाने में टाइम भी ज्यादा नहीं लगता, तो दाल चावल और आलू सबसे बढ़िया भोजन बताया। हाँ सादा भोजन है तो पेट भी खराब नहीं होगा, खास करके जगन्नाथ का तो बिल्कुल पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि उनको तो बताया मुरली में कि अगर 36 प्रकार के मालपुआ खिलाओगे तो उनके पेट में दर्द होने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जगन्नाथ कमजोर मैदे वाला कोई पार्टधारी है, और त्रिनाथ त्रिनाथ कोई रायल घराने का है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा गोरा चिट्ठा, उसको तो खूब माल खिलाओ सारे पति आते हैं, लेकिन उनको उनको पचने वाली उनकी जो फॉलोअर जेंट्री है वो भी गरीब होगी। तो पूरा में बिहार साइड में उड़ीसा साइड में सब गरीब लोग हैं, और पश्चिम में बंबई नगरी में वो माया की नगरी, माया ही माया, तो वहां तो धन दौलत की कमी है ही नहीं, खूब खाओ खूब उड़ाओ और खूब अपने देश वालों का कल्याण करो। दुनिया चाहे भांडे में चली जाए, दुनिया से हमें कुछ लेना देना लेना देना, तो वहां कार्य चित्र दिखाती क्या था? कहा जगन्नाथ के मंदिर में काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो, ऐसे नहीं कि जगन्नाथ और जगन्नाथ के फॉलोअर ही सब काले हैं, लेकिन तुम सब काले हो, क्योंकि तुम में तो बहुत से ऐसे भी हैं जो शरीर छोड़ करके आज शरीर छोड़ करके सती हो जाते जन्म लेंगे राधा कृष्ण के साथ। अगर भक्ति का संस्कार रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति का संस्कार माना क्या? ज्ञानी तू आत्मा माना क्या? ज्ञानी तू आत्मा माना पूरा 84 जन्म लेने वाली, और अज्ञानी अज्ञानी माने भगत। तो जिनको पूरी बाप की पहचान नहीं होगी तो बाप को पूरा फॉलो भी डायरेक्शन को फॉलो कैसे करेंगे? तो कृष्ण और राधा जो सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनकी जितनी भी प्रजा होगी वो सारी की सारी प्रजा बाप के उस असली स्वरूप को पहचानने वाली नहीं हो सकती। अगर वो पूरे असली रूप को पहचान ले तो डायरेक्शन भी पूरा पूरा फॉलो करे, फिर तो इसी जन्म में वो नैया को पार लगाने वाली बन जाए। तो वहां काले चित्र दिखाते हैं, कहां? जगन्नाथ के मंदिर में। बाबा कहते अभी तुम सब काले हो, अभी तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो गोरा मुंह वाला हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें बनती है। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वो पुजारियों को मिलता है, ये यादगार दिखाई कृष्ण की। कृष्ण की आत्मा कौन सी ने पार्ट बजाया? यहाँ ब्रह्मा के द्वारा कृष्ण की सोल ने पार्ट बजाया। क्या पार्ट बजाया? वो जब तक रहे तब तक वो 36 प्रकार के वैभव भोग लगते रहे, लेकिन 36 प्रकार के वैभवों का भोग लगाने वाला कभी विश्व का कल्याणकारी नहीं बन सकता। विश्व का कल्याण हो जाए, नरक से स्वर्ग बन जाए, सो नहीं हो सकता, तो बीच में ही छोड़ कर चले गए। तो उनके फॉलोअर या उनको भगवान के रूप में मानने वाले जितने भी होंगे उनकी भी क्या गति होगी? वो भी शरीर छोड़ करके विश्व कल्याण किए बगैर पहले से ही शरीर छोड़ करके उसी लोक में पहुंचेंगे जहां राधा कृष्ण की आत्मा जाके जन्म लेंगे। इस शरीर के रहते रहते वो उपलब्धि प्राप्त करने वाले नहीं। नर से नारायण बनने की जो उपलब्धि है, जो गायन है, क्या बनना है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो उपलब्धि संपन्न नहीं कर सकते। तो जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वो पुजारियों को मिलता है। क्या मिलता है? किसको? उसके ऊपर अधिकार किसका हो जाता है? पुजारियों का अधिकार हो जाता है। जो भी भोग वासना लगेगी वो सब भोग भोगेंगे कौन? वास्तव में श्रीनाथ नहीं भोग पाते, भोगते कौन? जितने भी पुजारी पंडे होते हैं। शूटिंग कहाँ हुई? रिहर्सल कहाँ होती है? जरूर ब्राह्मण की दुनिया की रिहर्सल की बात है। तो पुजारियों को मिलता है, वो फिर दुकान निकाल करके बेचते हैं। कौन? जो श्रीनाथ का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले हैं संगम युग में, श्रीनाथ यानी कृष्ण किशोर यानी ब्रह्मा, तो उनको जो कुछ भी भोग लगाया जाता है, फल फूल पत्र जो भी अर्पण करने वाले अर्पण करते हैं, उसको भोगते कौन है? पंड पुजारी। वो फिर क्या करते हैं? दुकान लगाते हैं, पैसे दो और माल
लेके
माल ले। पैसे दोगे तो तुम्हें माल मिलेगा, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें कोई माल मिलने वाला नहीं, हाँ तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। तो भोग भोग निकाल करके बेचते हैं दुकान लगा के। पहले 5 रुपए का दोना मिलता था, प्रसाद मिलता था, अब तो बात ही नहीं है, 20-25-25 रुपए का भोग मिलता है। हाँ भाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। और जगन्नाथ भंडारे में दुकान निकाल करके बेचा नहीं जाता है, चाहे नहीं। आप जगन्नाथ और श्रीनाथ मिक्स हो गए होंगे, इसलिए वो अपनी चलाते हैं तो वो अपनी चलाते हैं। माने ब्रह्मा की सोल जगन्नाथ का पार्ट बजाने वाले में प्रवेश कर गई होगी क्या? हाँ, सर माथे पर चढ़ी बैठी होगी तो वो अपनी चलाएगी, और वो अपनी चलाएगी तो वो बात अंत में तो कोई बात नहीं। लेकिन यादगार कहाँ की है श्रीनाथ और जगन्नाथ की, जबकि दोनों हाँ अलग अलग पार्ट बजाने वाले हो, तब तो यादगार अलग अलग बने। तो उनकी यादगार पश्चिम में बनी हुई है। पश्चिम वाले होते हैं सब स्वार्थी, और भारतीय जब थे पक्के सच्चे भारतीय तब थे निस्वार्थी, सारे विश्व के लिए कार्य करने वाले। तो हाँ तिरुपति में भी बेचते हैं, हाँ अभी तो तिरुपति है ना, बुद्धि में बैठा रहता है तिरुपति, मेरुपति ना क्या तिरुपति है, तू देख तू इसकी सवाल कर, मैं नहीं करता पूरा सवाल। जब तेरो पति है तो तू कर, मेरा पति हो तो मैं पूरी सवाल करूं। तो वो दुकान निकाल करके बेचते हैं, उसे शरीर निर्वाह होता है। अगर वो दुकान निकाल करके उस प्रसाद को न बेचें तो उनके शरीर का निर्वाह शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। और जगन्नाथ भंडारे में ये परंपरा नहीं रही। क्या परंपरा रही?
बेचने
भले प्रसाद भले वो देंगे सूखी रोटी दाल चावल का ही, लेकिन वो फ्री दिया जाएगा। चाहे रईस आदमी हो तो भी वो ही खाएगा, और गरीब आदमी हो तो भी उसको भी वो ही खिलाया जाएगा। खाओ बेटा खिचड़ी। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, क्या तुम क्या बनते हो? स्वर्ग के मालिक। वहां जो वैभव तुम खाते हो वो दास दासियां भी खाते हैं। हाँ 36 प्रकार के वैभव बनते हैं, इतने तो खाए नहीं सकेंगे तो फिर दास दासियां खाते हैं। स्वर्ग में इतने वैभव होंगे तो हम तो इतने नहीं खा पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? दास दासियों को भी कोई भोजन मिलेगा, परंतु इसमें ही खुश नहीं हो जाना है कि 36 प्रकार के भोग हम खाएंगे, हमारी दास दासियां भी खाएंगे। हैं वो क्या लोग हैं, बैगरी पार्ट चल रहा है उनका, हैं खाने को भोजन नहीं मिलता, पहनने को कपड़े नहीं मिलते। तो बाबा कहते हैं इतने में ही खाने पीने और पहनने ओढ़ने और मकान अच्छे अच्छे मकानों में रह करके खुश नहीं हो जाना। रोटी कपड़ा और मकान चाहे अच्छा मिले तो रईस आदमी भी उसी से पलते हैं, और जिनको थोड़ा जरूरत पूर्ति मिल जाता है उससे भी पलते तो है ना, जिंदगी तो दोनों की पलती है। पाव भर रोटी मिलेगी तो भी उतना ही पुरुषार्थ हो सकता है, और 36 प्रकार के माल कुएं मिलेंगे तो भी नहीं, तो 36 प्रकार के भोग खाने में बीमारी हो सकती है, 36 प्रकार के भोग इकट्ठे करने में भीख मांगनी पड़ सकती है, 36 प्रकार के भोग खाने में उल्टे उल्टे धंधे करने पड़ सकते हैं, लेकिन सूखी रोटी दाल चावल मकर खाने वालों को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो बाकी किसका ज्यादा बनेगा, कम खर्च वाला नसीब का या ज्यादा खर्च वाला नसीब का? کم خرچ بالا نسیگا ہے جاتا ہے. جو جتنا کم خرچے میں یتی کا خرچہ چلا لے گا وہ اتنا ہی زیادہ بھاگیمان بن گئے. تو بابا کہتے ہیں کہ داس داسیاں رکھنے میں اور ان کو 36 پرکار کے بھوگ کھلانے میں خوش نہیں ہو جانا. راجدھانی تو ساری یہاں بننی ہے نا. کیا راجدھانی میں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو داس داسی پد پانے والے ہیں, وہ بس کھانے پینے میں مست رہیں گے, کریں گے دھریں گے کچھ نہیں, کھائیں گے پیئیں گے خوب, اور پرسارتھ نہ کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے جو براہمنوں کو پرسارتھ کرنا چاہیے. تم تو وہاں بہت موج میں رہیں گے. کہاں؟ وہاں. یہاں کی نئی بات بتائی تو تم یہی سرگ بنا کر کے بیٹھ جاؤ, 36 پرکار کے مال بھوک کھانے لگو. ون آل مائٹی اتھارٹی کا استھاپن کیا ہوا سورگ کا راج بھاگیہ تم بچوں کو ملتا ہے. کیا کہا؟ ان داس داسیوں کو اور ان داس داسیوں کو رکھنے والوں کو جو ایسی شوٹنگ کرتے ہیں 36 پرکار کا بھوک کھانے اور کھلانے کی, ان کو کیا ملتا ہے اور کس سے ملتا ہے؟ ان کو ون آل مائٹی اتھارٹی سے نہیں ملتا, اور تم کو ورلڈ آل مائٹی اتھارٹی جو ہے اس سے ڈائریکٹ ملتا ہے. کہتے ہیں گیان بھکتی بیراگ, گیان ملے تو بھکتی کے کرم کانڈوں سے بیراگ آ جائے. اب بیراگ تو دو پرکار کا ہوتا ہے, سنیاسیوں کا ہے حد کا بیراگ, وہ کیا کرتے ہیں وہ گھر گھاٹ اپنا چھوڑ دیں گے اور دوسرا بنا کر کے بیٹھ جائیں گے. گھر گھاٹ چھوڑ دیتے ہیں, یہ نہیں کہ اسمرتی سے چھوڑ دیں. اسمرتی سے چھوڑنا شریشٹھ ہے, باقی پریکٹیکل میں اپنے گھر گھاٹ کو چھوڑنے کی کوئی ڈائریکشن شیو بابا نے نہیں دیا. گھر بار چھوڑ جا کر کے جنگل میں بیٹھ, پھر وہ گپت مدد کرتے ہیں. کون؟ ہاں کون سی گپت مدد کرتے ہیں؟ پیورٹی کی. جنگل میں جا کے بیٹھے تو پوتر تو رہے نا, تو پوترتا کا جو وائبریشن بنتا ہے اس سے وہ ان کی گپت مدد ہوتی. بھارت کا بہت فائدہ کرتے. جب بھارت دواپر کے انت میں کرشن کی پوجا کو لے کر 16,000 رانیوں کی پرمپرا چل پڑی راجاؤں نے, تو کتنا راجاؤں کو پتن ہو گیا. ایسا راجا تھا پرجا راجا ہے تو کھلے عام زیادہ رانیاں رکھیں گے, اور پرجا کو تو اتنا دھن ہے نہیں تو وہ کیا کرے گی؟ وہ چوری چکاری کرے گی. تو پھر بے وچار پھیل گیا. اس سمے جو سنیاسی تھے ستو پردھان اسٹیج والے آئے, انہوں نے پوترتا کا پاٹھ پڑھایا, گھر گھاٹ چھڑوایا راجاؤں کو, اور پوتر جیون بتایا اور ان کو بھی بتانے کی شکشا دی. تو بھارت کا بہت فائدہ کرتے ہیں. کون؟ سادھو سنیاسی. جیسے بناش کے لیے کہا جاتا ہے ان سے سورگ کے گیٹ کھلتے ہیں, کتنا بڑھیا کام ہوتا ہے. بناش نہ ہو تو سورگ کا گیٹ کھل ہی نہیں سکتا. گیٹ وے ٹو ہیون از مہابھارت. ایسے تو مہابھارت میں خون خرابہ ہوتا ہے, نہ تو خون خرابہ خون ہی نہ کے, لیکن پھر بھی بابا نے کلیانکاری بتایا. کیوں؟ کیونکہ جب تک وناش نہیں ہوگا تب تک سورگ کے گیٹ کھل نہیں سکتے. مہابھارت گرہ یدھ سے جو آتما پسار نہیں کرے گی نہیں گزرے گی, وہ سورگ کے گیٹ میں گھس نہیں سکتی. تو ان سے سورگ کے گیٹ کھلتے. ویسے یہ بھی پوترتا کی مدد کرتے ہیں. کون؟ سنیاسی بھی گپت مدد کرتے ہیں. اس لیے ڈراما میں انہوں کی مہما ہے. کنوں کی؟ سنیاسیوں کی صرف مہما ہوتی ہے, لیکن ان کا پوجن مندر بنا کر کے ان کا پوجن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کی پوترتا ہے وہ ادھوری پوترتا ہے. سمپورن پوترتا دیوتاؤں جیسی نہیں ہے. جیسی دیواتماؤں نے پرسارتھ کیا, گھر گرست میں رہنا بھی وہی کیچڑ میں, اور کیچڑ میں رہتے ہوئے بھی بدھی سے اوپرام رہنا, بدھی کو ایک دم ڈیٹیچ کر کے رکھنا. परंतु अभी तो वो सन्यासी भी डिसर्विस करने लग पड़े। पहले तो सर्विस करते थे, पवित्रता की मदद करते थे, लेकिन अब पवित्र रहते थे और दूसरों को पवित्र बनाते थे। अब क्या करते हैं, जैसे दुनिया में जो सन्यासी है, रजनीश, महेश योगी, वीरेंद्र ब्रह्मचारी वगैरह वगैरह, वो विदेशों के खूब चक्कर लगाते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं और ढेर सारे व्यभिचार के कर्म करते रहते हैं। बिल्कुल विदेशियों के रंग में रंग गए और भारतीय सभ्यता को, त्याग तपस्या की सभ्यता को भूल गए। तो अभी तो वो डिससर्विस करने लग पड़े। ऐसे तो कहते थे कि परमात्मा तो बेअंत है, पहले कहते थे कि परमात्मा का अंत हम नहीं पा सकते, और अभी क्या कहते, परमात्मा सर्वव्यापी, मेरे में भी है, तेरे में भी है, आत्मा तो परमात्मा, माने परमात्मा और कोई एक मुकर्रर रथ में नहीं है, परमात्मा हर जगह मौजूद है। जहां तुम बैठ के याद करो वहीं तुम्हें परमात्मा से डायरेक्शन मिलने लग पड़ेंगे। माने परमात्मा कोई साकार शरीर में आकर के प्रैक्टिकल में डायरेक्शन देता है और न स्वर्ग की स्थापना खुद करता है, स्वर्ग की स्थापना तो हम करेंगे, शिवो हम हैं स्वर्ग की स्थापन करने वाले। तो पहले कहते थे बेअंत है, और अब क्या कहते, अब शिवो हम, परमात्मा सर्वव्यापी। जबकि लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं को ही ज्ञान नहीं तो भला इन शूद्रों में कैसे हो सकता है। जो लक्ष्मी नारायण देवताएं कहे जाते हैं उनको ये ज्ञान नहीं है, वो ही अज्ञानी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सत्युग के हैं, सत्युग में तो देवताएं जैसे बुद्धू। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय रूप हो जाता है। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं का पाठ किसने बजाया, यहाँ शूटिंग पीरियड में लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं का पाठ किसने बजाया, जिन्होंने दूसरों को सुख दिया, कभी दुख नहीं दिया, ऐसे ऐसे कर्म किए, किसने बजाया ऐसा पाठ, बजा के किसने दिखाया, ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती की ये गारंटी है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया, तो सुख जिन्होंने हमेशा दिया वो देवता हुए ना। तो जब उन्हीं में ही ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान नहीं बात कही, ब्रह्मा सरस्वती को ज्ञान नहीं था, हाँ उनको ये ज्ञान नहीं था कि हमको इसी शरीर से, शरीर रूपी नैया से पार जाना है, शरीर रूपी नैया को भी पार ले जाने वाला एक ही बाप की भैया। अगर उनको ये ज्ञान होता, ये धारणा शक्ति होती, ये निश्चय हो गया होता कि हमारा ये शरीर भी पार जाएगा, पक्का निश्चय हुआ पड़ा होता, तो उनका शरीर रूपी नैया कभी खलास नहीं हो सकती। जरूर निश्चय में कोई ज्ञान के आधार पर गड़बड़ी थी, वो इस बात को नहीं पहचान सके कि ये शरीर रूपी नैया कैसे पार जाएगी और किसके द्वारा पार जाएगी, कौन सा तरीका होगा। तो लक्ष्मी नारायण आदि देवताओं को ही ज्ञान नहीं तो शूद्रों में कैसे हो सकता। मानो ब्रह्मा सरस्वती में ही जो लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाली सचिव में आत्माएं हैं, उन्हीं में ही ये पार्ट ये ज्ञान नहीं है तो इन शूद्रों में कैसे हो सकता। शूद्र मान, शूद्र किसे कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है व्यभिचारियों को, शूद्र माना तमो प्रधान व्यभिचारी विकारियों को। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, जो ज्ञान मैं देता हूं वो ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, माना पूरा पूरा लोप नहीं होता, फिर भी कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं रहती है जो इस बात की गहराई को समझती है। तो उनका हद का बैराग और तुम्हारा है बेहद का बैराग। तुम्हारा माना तुम जगन्नाथ और जगन्नाथ के जो भी फॉलोअर्स हो, तुम्हारा है बेहद का बैराग। तो तुम्हारे तो काले मुंह बनाए दिए और उनके गोरे चित्र बनाए, सो क्यों बताओ। हाँ वो हो गए सन्यासी, उन्होंने तो घरवास घरघाट छोड़ा और जाकर के दूर बसे वीराने में, कौन किसने? हमारे तो ब्रह्मा बाबा सन्यासी हो गए क्या? ब्रह्मा बाबा ने घर घाट छोड़ कर कहीं दूर जंगल में जाके बसे क्या? कहाँ कैसे? माउंट आबू ने सिंध हैदराबाद छोड़ करके कहाँ गए? अकेले जाकर के कराची में बस गए। फिर बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, तो सब कराची में पहुंच गए। तब फिर वहां बहुत हो गए। फिर उनको यहाँ ले आए दो तीन चार वर्षों के बाद माउंट आबू। तो घरवास तो छोड़ा ना, बाल बच्चे भी त्यागने पड़े। तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो उनका हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। माने रहो भी कीचड़ में, कर्मेंद्रियों से रहो कहाँ? कर्मेंद्रियों से मन बुद्धि से उपराम रहो। और कर्मेंद्रियों से भल कोई भी कर्म भल कोई भी कर्म, लेकिन जब बुद्धि ही नहीं लगी होगी उस कर्म में तो उसका पाप कर्म नहीं बनेगा। पाप कर्म कब बनता है? जैसे हम आंखें खोले बैठे हैं और हम किसी की गहरी याद में हैं। जिन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में देखी होंगी वो जानते होंगे। लैला मजनू की फिल्म दिखाते हैं, सीरी फरियाद की फिल्म दिखाते हैं, तो उनको जब याद में बैठे हुए दिखाते हैं या खड़े हुए हैं चल रहे हैं और उनकी बुद्धि कहीं दूसरी जगह, आंख देखने से ही पता लग रहा है कि ये यहाँ है ही नहीं, तो उनकी आंखों के सामने से कोई गुजर जाता है उनको पता नहीं लगता। ऐसी बात का हमने भी अपने जीवन में कभी कभी हम तुमने भी अनुभव किया। तो जब चीज हमने आंखें खुली होते हुए देखी ही नहीं तो उसका लगाव हमारे अंदर लगेगा, लग ही नहीं सकता। तो ऐसे आंखों का ये मिसाल दिया, ऐसे ही और कर्मेंद्रियों के बारे में भी है यही बात कि अगर हम उन कर्मेंद्रियों से कोई कर्म कर रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, पांव से चल रहे हैं, लेकिन उसका हिसाब